शुक्रवार 12 फरवरी के दिन भर के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली। राजद्रोह के आरोप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष गिरफ्तार, छात्रों में भय का माहौल।
काफी स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, वो लग रहा था कि उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है।
ढक्के नारे कर रहे हैं, तो ये आपको देखना चाहिए कि चेहरे ढक के कुछ बाहर वाला क्यों नारे कर रहा है।
मध्य प्रदेश के धार में तनाव के बीच हुई पूजा, पढ़ी गई नमाज भी। और आज 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की 100वीं पुण्यतिथि है। सुनेंगे एक विवेचना।
जनरल रैंग अप द चीफ, ही सेड आई हैव टू हैव परमिशन टू यूज द एयर। ही सेड जगी वी आर नॉट एट वॉर। ही सेड सैम यू कैन हियर दैट इन दिल्ली फ्रॉम द पॉलिटिशियंस।
खबरें खेल जगत से भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोप है कि पिछले दिनों विश्वविद्यालय परिसर में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर कार्यक्रम के दौरान भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की अखंडता और एकता विरोधी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं वाम दलों ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया है। जर्मनी के म्यूनिख में विश्व के महत्वपूर्ण देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि एक हफ्ते के अंदर सीरिया में युद्ध को खत्म किया जाए, लेकिन युद्ध में ये विराम चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट के खिलाफ संघर्ष पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही इस वार्ता में शामिल 17 सदस्यीय इंटरनेशनल सीरिया सपोर्ट ग्रुप सीरिया में सहायता सामग्री पहुंचाने में तेजी लाने पर भी सहमत हुआ। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि वो सीरिया में 24 घंटों के भीतर सहायता सामग्री पहुंचाना शुरू कर सकता है। म्यूनिख में हुए इस समझौते पर फिलहाल कई संशय हैं। उधर नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने संवाददाता सम्मेलन में ये उम्मीद जताई कि सीरिया पर हुए इस समझौते का मतलब है कि रूस अब कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हमलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगा।
My message is that we will welcome a more constructive role of Russia in the fight against the ISIS.
मेरा संदेश ये है कि हम रूस की अधिक रचनात्मक भूमिका का स्वागत करेंगे। अभी तक रूस ने सिर्फ सरकार विरोधी दलों को अपना निशाना बनाया है, और दरअसल उनके तेज हवाई हमलों से सीरिया में शांति समझौते पर बातचीत पर बुरा असर ही पड़ा है। लेकिन मैं इस समझौते का स्वागत करता हूं। अब अहम बात यह है कि हम इसे पूरी तरह लागू कर पाएं। ये थे येंस स्टोल्टनबर्ग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश की सरकार ने रोहिंग्या जनजातीय समूह के उन लोगों की गणना शुरू कर दी है जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है और जो म्यांमार में हुए बुरे बर्ताव से बचकर बांग्लादेश आए हैं। हजारों रोहिंग्या लोगों का शरणार्थी शिविरों में पंजीकरण हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बांग्लादेश में लगभग 5 लाख रोहिंग्या रहते हैं। प्रवासियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की सहायता से संचालित ये जनगणना कई हफ्तों तक चलेगी। जापान के शेयर मार्केट में आज 5वीं सदी की भारी गिरावट से निवेशकों में हड़कंप मच गया। वैश्विक बाजार में उथल पुथल और डॉलर के मुकाबले येन के मजबूत होने से बड़े निर्यातकों को जबरदस्त नुकसान हुआ। हालांकि दिन में कुछ सुधार हुआ, फिर भी यह 4.85% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कल ही भारतीय शेयर बाजार में भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी और सेंसेक्स 807 अंकों तक लुढ़क गया था। विश्व की अर्थव्यवस्था को लेकर पैदा हुई चिंता के बीच लंदन, अमेरिका और यूरोप के शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। माली के उत्तर में संयुक्त राष्ट्र के बेस पर हुए हमले में तीन शांति रक्षक मारे गए हैं। 30 अन्य शांति रक्षक घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र के अन्य केंद्रों से सहायता के लिए अतिरिक्त बल बुलाया जा रहा है। बीबीसी समाचार।
ये दिन भर है, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज दिल्ली पुलिस ने प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि वो उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे जो संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी की याद के तौर पर आयोजित किया गया था। पुलिस ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल लोगों ने वहां भारत विरोधी नारे लगाए। इस पूरी घटनाक्रम पर नज़र बनाई रखी थी हमारे संवाददाता विनीत खरे ने, जो अभी थोड़ी देर पहले स्टूडियो में मौजूद हुए हैं। विनीत हमारे साथ हैं। विनीत, ये बताएं कि क्या हालात हैं, प्रतिक्रिया कैसी है वहाँ जेएनयू में और क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग?
आज दिन भर में जेएनयू में ही था फैसल, और वहाँ पर हर जगह जो कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी हुई है उसकी चर्चा हो रही थी, किसे गिरफ्तार किया जा सकता है उस पर छात्र बात कर रहे थे। हॉस्टल्स में पुलिस के रेड बताया गया कि वहाँ हो रही है, उसकी भी बात थी। छात्रों के परिवार वाले लगातार उन्हें फ़ोन कर रहे थे कि भाई कैसा हाल है और ठीक ठाक हैं कि नहीं आप। और थोड़ी देर पहले विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। आइए सुनते हैं एक शिक्षक का क्या कहना था।
That the current excessive police action is totally uncalled for and it has only aggravated.
इस शिक्षक का कहना था कि अत्याधिक पुलिसिया कार्रवाई की कोई ज़रूरत नहीं थी और इससे स्थिति और ख़राब हुई है। जेएनयू है वामपंथी सोच का गढ़ रहा है। दो छात्रों ने मुझे आज का जो माहौल है उसके बारे में बताया।
काफ़ी स्टूडेंट्स डरे हुए हैं जो वहाँ पे मार्च में शामिल थे, उनको लग रहा था कि उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन वो लोग नारे से बच रहे थे और नारा वो चार पांच स्टूडेंट्स ही थे जो दे रहे थे, काफ़ी कंट्रोवर्शियल था।
मीडिया से यहाँ पे कई लोगों को शिकायतें हैं,
थोड़ा डर आ गया कि मीडिया यहाँ पे आके जो एबीबीपी और बीजेपी जो है उसको सपोर्ट करके
डिफेंड
को बदनाम करने की कोशिश जो की रही करी जा रही है, करने नहीं दे रहे हैं।
और आज यहाँ पुलिस का काफी, पुलिस के काफी लोग यहाँ पर हैं।
हमारे दो हॉस्टल में रेड भी हुआ है।
नर्मदा हॉस्टल में भी कश्मीरी स्टूडेंट्स जो यहाँ रहते हैं उनसे ज्यादातर पूछताछ करने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस।
अच्छा, मैं विश्वविद्यालय में कई जगह गया, वहाँ पर कई लोग बहस कर रहे थे कि 9 फरवरी की रात आखिर क्या हुआ, किस तरह की नारेबाजी हुई। आइए, कुछ दो छात्र थे, दो तीन छात्र थे, कुछ आपस में बात कर रहे थे, ये सुनवाते हैं क्या बहस कर रहे थे, क्या बात हो रही थी।
पूरा कहाँ शुरू होता है, महिलाएं मांगे आजादी, पुरुष मांगे आजादी,
बर्बादी वाले जब नारे लगते हैं आप लोग सारे लोग वहाँ कोई इस चीज को खिलाफ आवाज नहीं उठाता है, रोका
गया था
जी। हाँ भाई साहब, मैं समझ रहा हूँ
आपको लग रहा है
नारे रोके गए होते हैं।
तो ये माहौल ये बताता है कि किस तरह से बहस हो रही थी। विश्वविद्यालयों में कई छात्रों से मेरी बात हुई, उनका कहना था उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादातर छात्र चाहते हैं कि माहौल सही हो, सही जो एजुकेशन के लिए आए हैं वो वहाँ पर हो। आइए सुनते हैं।
जेएनयू की जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व थे, जो मैक्सिमम मेजॉरिटी है वो इन्वॉल्व नहीं थे। तो अगर हम जेएनयू को शट डाउन जैसे स्लोगन्स अगर डालेंगे ऑन ट्विटर, इनको दिखाएंगे, तो इससे बस यही साबित होता है कि वी जस्ट लिसनिंग टू द माइनॉरिटी ऑफ द पीपल एंड नॉट द मेजॉरिटी। एंड इसमें यह भी है कि सिर्फ जेएनयू स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे, इसमें और भी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। We are not related to any of this and जो भी नारे लगाए गए, जो भी स्लोगन्स थे वो उनसे the general point of view in the university, it's not at all related to that. हमें ये भी सोच इस बात को सोच सकते हैं कि इसके पीछे political agenda हो सकता है, हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी parties involved हैं and इसमें कई लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं उनको बुलवाने के लिए, और सभी students जे एन यू के नहीं थे।
तो आप उस वक्त कहाँ थे जब ये नारेबाजी हो रही थी?
हम घर पे थे,
जामा मस्जिद पे
हम पढ़ रहे थे। इनफैक्ट
extremists, what they want is attention. If you do not pay attention to those people, they'll melt away.
एक बात मैं बस आखिरी में कहना चाहूंगा फैसल, कई जो वामपंथी छात्रों से बात की मैंने, उनका कहना था कि जेएनयू में ऐसे नारेबाजी पहले भी होती रही है और इसमें कोई नई बात नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विनीत खरे। हम आगे आपको विनीत खरे की पूरी रिपोर्ट अगले कार्यक्रम में भी सुनवाएंगे।
बीबीसी इंडिया बोल, कौन है देशद्रोही, क्या परिभाषा है देशद्रोह की, बोलने की आज़ादी क्या याकूब मेमन और अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगाने का हक देती है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद उठे ऐसे कई सवाल, छात्र समुदाय दो धड़ों में बटा, पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जाहिर कीजिए बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 13 फरवरी शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811027001 पर। बीबीसी इंडिया बोल।
तो कार्यक्रम में हिस्सा लेना ना भूलें। और अभी अभी खबर मिली है कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा को गोली मार दी गई है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंकज प्रियदर्शी। पंकज, क्या खबर है?
जी फैसल, जैसा कि आपने बताया, बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष विशेश्वर सिंह ओझा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और पुलिस अधिकारियों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये 5:30 बजे की घटना है और वो शाहपुर में एक गांव है वहां से वो लौट रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चलाई है। उनका ड्राइवर भी घायल हुआ है, कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है। लेकिन फैसल, मैं आपको बता दूं कि जब मैं बिहार चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए गया था, विधानसभा चुनाव की रिपोर्टिंग के दौरान, तो उस समय मैं आरा में गया था, शाहपुर क्षेत्र में, जहाँ से ये चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ मैंने उनसे मुलाकात की थी और उनसे कई सवाल पूछे थे, क्योंकि उनकी छवि आपराधिक छवि भी मानी जाती थी और कई मुकदमे उन पे चल रहे थे। तो जब मैंने उनसे इस आरोप के बारे में पूछा, तो चलिए सुन लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या था।
उस समय कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, हमारी जमीन की लड़ाई थी, भू माफिया के द्वारा कब्जा किया गया था। हम लोग बहुत प्रयास किए, प्रशासन कोई मदद नहीं किया, हाई कोर्ट से जजमेंट के बावजूद भी यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया और उस संघर्ष के दौरान बहुत तरह के मुकदमे हुए, गलत मुकदमों में फंसाया गया।
तो ये चुनाव लड़े थे शाहपुर क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर, लेकिन हार गए थे। शिवानंद तिवारी के बेटे मंटू तिवारी ने उनको हरा दिया था। और आपको याद होगा फैसल की, ये वही चुनावी क्षेत्र है जहां पर बिहार के आरा से सांसद आर के सिंह हैं, उन्होंने पार्टी से नाराजगी जताई थी कि आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिया जा रहा है। तो अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए पंकज प्रियदर्शी। मध्य प्रदेश के धार में मुसलमान और हिंदू भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में नमाज और पूजा अर्चना कर पाए, जिसके बाद वहां पिछले दिनों से जारी तनाव खत्म हो गया है। इस धार्मिक स्थल में दोनों समुदायों को पूजा की इजाज़त है, लेकिन इस बार बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन अदा की जानी थी, इस वजह से वहां तनाव था। भोपाल से शूरे न्याजी की रिपोर्ट।
धार शहर अब राहत की सांस ले रहा है। सुबह के वक्त जब हिंदुओं की पूजा शुरू होनी थी, उस वक्त हिंदू संगठनों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो हिंदुओं के साथ सख्ती कर रही है। इसी के चलते उन लोगों ने भोजशाला के बाहर ही हवन और पूजन शुरू कर दिया।
बाहर ही मनाने वाले हैं। अच्छा।
उनका ये भी कहना था कि मुसलमानों के लिए भोजशाला खाली कराने के लिए उन पर बल प्रयोग किया जाएगा, इसलिए वो लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। भोज उत्सव समिति के सदस्य अशोक जैन ने बताया, इसी दौरान शंकराचार्य नरेंद्र नाथ सरस्वती भोजशाला के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा,
हिंदू समाज को नहीं जाने दिया जा रहा है, रोका जा रहा है और हवन पूजन नहीं करने दिया जा रहा है, तो हिंदू समाज का दमन कर रहा है, नमाज को परमिशन देके उसके विरोध में है।
इसी बीच प्रशासन ने मुसलमानों को जुमा की नमाज को भोजशाला की छत पर अदा करवाया, जिसका वीडियो भी प्रशासन ने जारी किया। वहीं शहर भर से घूमकर वाघ देवी की शोभा यात्रा भी इसी समय भोजशाला पहुंच गई, जिसके बाद प्रशासन ने हिंदुओं को पूरी तरह से अंदर जाने की इजाजत दे दी। उसके बाद सभी ने भोजशाला के अंदर पूजा की, जो देर शाम तक जारी रही। कमिश्नर संजय दुबे ने बताया,
हम लोग इस बात से प्रसन्न हैं कि जो राज्य शासन ने हमारे ऊपर दायित्व सौंपा था कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से नमाज और पूजा करानी है, उसको हम लोग करा पाए हैं और ये सब संभव हो पाया है टीम वर्क की मदद से, यहाँ के स्थानीय नागरिकों की मदद से और सभी धर्मों के धर्मावलंबियों की मदद से।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन आने की वजह से पूजा और नमाज का वक्त तय कर दिया था। इसके मुताबिक सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक पूजा और 1 से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जानी थी। 3 बजे के बाद फिर से हिंदुओं को प्रवेश की इजाजत दी गई थी, लेकिन हिंदू संगठनों द्वारा दिन भर पूजा करने की मांग के चलते तनाव पैदा हुआ था, जिसकी वजह से सरकार को सुरक्षा के भारी इंतजाम करने पड़े ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। शुरह न्याजी, BBC न्यूज, भोपाल।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और अब आज की विवेचना। 1971 में भारतीय सेना ने 2 हफ्ते से भी कम समय में न सिर्फ पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हथियार डालने पर मजबूर किया, बल्कि विश्व मानचित्र पर एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। भारत का यह सैन्य अभियान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस जीत के सूत्रधार थे पूर्वी कमान के सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। अगर वो जीवित होते तो 16 फरवरी को 100 साल के हो गए होते। उनकी जन्म शताब्दी पर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की इस विवेचना में।
मैं ओवरऑल कमांडर था और ये काम जो है हम 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसको कामयाबी के साथ कर सके, उसकी ये वजह थी कि जो हमने 62 में और 65 में जो हमारी कमज़ोरियाँ थी, वो हमने आहिस्ता आहिस्ता उन कमज़ोरियों को ठीक कर सके। और ये पहली दफ़ा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर नीचे तक और ऐसे ही एयरफोर्स में और नेवी में हमारे अपने कमांडर थे जिनका प्लानिंग भी अच्छा था और हमारे जवानों का और अफसरों का एक्सिक्यूशन भी बहुत बढ़िया था कि हमें यह कामयाबी हुई।
ये थे 1971 की बांग्लादेश लड़ाई में पूर्वी कमान के सेनापति जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। 1971 की जीत के कई दावेदार थे। राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका तो थी ही, लेकिन सेना की तरफ से भी कई लोगों की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने और फील्ड कमांडर की भूमिका को कम आंकने की कोशिश की जा रही थी। 1997 में जगजीत सिंह अरोड़ा के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल JFR जैकब ने एक किताब लिखी, सरेंडर एट ढाका, जिसमें ये कहने की कोशिश की गई कि 1971 की लड़ाई में उनकी बड़ी भूमिका थी, न कि जगजीत सिंह अरोड़ा की। पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता कहते हैं,
71 वॉर विक्ट्री का क्रेडिट उनको जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी को सबसूम कर लिया आर्मी चीफ ने। जब मैं उनको मिला उनके घर में, इस बात को छेड़ने की कोशिश की कि आपको जो सम्मान आपको ड्यू था वो आपने पाया या नहीं पाया, और अगर नहीं पाया तो क्यों नहीं पाया, तो उन्होंने बिना सोचे समझे, विदाउट ब्लिंकिंग एंड आईलिड, उन्होंने कहा मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ मिल गया। अब देखिए, बांग्लादेश ने मुझे सम्मान दिया, हमारी सरकार ने उनको पद्म भूषण से डेकोरेट किया, लेकिन उनकी मॉडेस्टी है कि उन्होंने जनरल जेकब या सैम मैनेकशॉ के बारे में कुछ नहीं कहा। जनरल जेकब वो ओपनली कहते थे कि मुझे नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, और मैं समझता हूँ जनरल जेकब को बहुत कुछ मिला, और जनरल जगजीत अरोड़ा जिन्होंने कभी इसके बारे में कंप्लेन नहीं किया कि हमें कुछ नहीं मिला, उनको और मिलना चाहिए था। और मैंने कोशिश की उस समय पता करने की कि क्या प्रॉब्लम थी उस समय, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी विस्की खत्म हो गई है, आप दूसरी विस्की पीजिए।
बाद में सैम मानेकशॉ ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि 1971 में वाहवाही मेरी हुई, लेकिन असली काम तो जग्गी ने ही किया था। उनके भांजे और 1971 की लड़ाई में उनके साथ कोलकाता में रह चुके गुरप्रीत सिंह बिंद्रा कहते हैं कि जनरल जैकब का दावा सही नहीं है।
जनरल अरोड़ा कमांडर थे, जनरल जेकब चीफ ऑफ स्टाफ थे। चीफ ऑफ स्टाफ स्टाफ ऑफिसर होता है, ऑर्डर कमांडर देता है, चीफ ऑफ स्टाफ फॉलो करता है। मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ कि कोई स्टाफ ऑफिसर डिसीजन दे रहा है। और जो कोर कमांडर थे जनरल OP मल्होत्रा, आगे जाके आर्मी चीफ बने जनरल सगत सिंह, ऐसे कोर कमांडर क्या मेजर जनरल से डिसीजन लेंगे? मेरे सामने तो कई चीजें हुई, जनरल अरोड़ा ने बोला कि इसको ऐसा करो वैसा करो। और जो मेन क्रूशियल फैक्टर हमारे सरेंडर में था, जो हमने 15 तारीख अर्ली मॉर्निंग पैरा ड्रॉप किया था खुलना के पीछे, वो जनरल अरोड़ा और जनरल OP मल्होत्रा ने फैसला किया था। पहली बार ही सुन रहा हूँ कि कोई स्टाफ ऑफिसर कह रहा है कि मैंने पूरी लड़ाई लड़ी, मैंने पूरे फैसले लिए। मैं जनरल जेकब की बड़ी इज्जत करता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया 71 में, मैंने खुद देखा है। पर ये कहना कि उन्होंने सारे फैसले किए, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है और बिल्कुल गलत है।
1971 की लड़ाई विधिवत शुरू होने से पहले 23 नवंबर को ही भारतीय सेना ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में एक ऑपरेशन किया था। उस दौरान पाकिस्तान के सेबर जेट्स ने जनरल अरोड़ा के हेलीकॉप्टर पर हमला किया था। उनके ADC रहे और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए मोहिंदर सिंह एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
23 नवंबर को हम उधर जाते हैं, हिज हेलीकॉप्टर वाज अटैक्ड बाय द सेबर्स। वैसे लगी नहीं, फटाफट हेलीकॉप्टर जो था बिन के अंदर धकेल दिया गया, बंकर के अंदर हम चले गए। वापस आए तो जनरल रैंग अप द चीफ, ही सेड आई हैव टू हैव परमिशन टू यूज द एयर, आई एम स्टैंडिंग इन हिज ऑफिस व्हेन दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। ही सेड जगी वी आर नॉट एट वॉर, ही सेड Sam, you can hear that in Delhi from the politicians. I cannot tell that to my troops. If you don't give me the permission, I am going to pull back. And within 1 hour came the permission. And then we had our aircrafts ready at Glaikunda. They came for the second sortie for the same 4 cyber jets at 4 o'clock. And then you know what happened to them.
3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला किया, तो इंदिरा गांधी कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी।
जब उन्होंने हमला किया तो फिर जनरल अरोड़ा के जो भी शैकल थे, बंदिश थी, वो तो खत्म हो गई। तो वो पहले तो गए मैदान में, इंदिरा गांधी जी ने भाषण खत्म किया तो वो जब आए तो उनकी तस्वीर है, वो सीरियस है। जब जनरल साहब आए तो उन्होंने कहा क्या हो गया, उन्होंने ये हो गया, उन्होंने कहा जनरल साहब आप संभाल लोगे, उन्होंने कहा मैं संभाल लूंगा, आप बेफिक्र होके जाइए। उनको क्या, आपको दिल्ली तक फाइटर एस्कॉर्ट हमने दिया हुआ है, आप दिल्ली जाइए। वो दिल्ली गए, वापस आए अपने ऑफिस में, जनरल महिंदर सिंह जो पीछे जनरल बने उनके एडीसी थे, उनको बोला कि मेस में जा, कैंटीन में जा, विस्की की बेस्ट बॉटल लेके आ। तो उन्होंने अपने स्टाफ के साथ पहले विस्की की बोतल खत्म की, फिर कहने लगे कि नाउ जेंटलमैन देयर इज अ वॉर टू बी फॉट, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस।
पूरे युद्ध के दौरान जनरल जग्गी अरोड़ा 18 से 20 घंटे काम करते थे और रोज एक न एक अग्रिम मोर्चे पर जाया करते थे,
क्योंकि वो 8 बजे उनका कॉन्फ्रेंस होता था, हम 7:15 बजे ब्रेकफास्ट खाते थे। मैं 16 दिसंबर को सुबह जब वो आए 7 बजे ब्रेकफास्ट खाने, तो उन्होंने इतना कहा कि आज सुबह जनरल न्याजी का वायरलेस मैसेज आया है 5:30-6 बजे कि सीज फायर प्रपोज करते हैं। इतना कह के उन्होंने कहा कि मेरी स्टडी में मेरे को ब्रेकफास्ट भेज दो। वो फिर 8 बजे उन्होंने कहा कि हमने उनको अब जवाब दे दिया है कि हम आपका सरेंडर एक्सेप्ट करते हैं। फिर 9 बजे जनरल न्याजी का फिर मैसेज आया कि प्लीज एक्सेप्ट अ सीज फायर। इन्होंने फौरन जवाब दिया कि हम आपका सरेंडर एक्सेप्ट करते हैं और हमारे दो अफसर चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेकब और कर्नल MS खारा, कर्नल इंटेलिजेंस ईस्टर्न कमांड, आपके पास भेज रहे हैं सारी चीज सेटल करने। उस टाइम पे फिर दिल्ली से आया डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर, जनरल अरोड़ा ने उसमें पढ़ के उनको दिल्ली को फौरन बोला कि ये ठीक है, पर अगर कोई पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर या सोल्जर मेरे को सरेंडर करेगा तो मैं उसकी जिनीवा कन्वेंशन में सेफ्टी, वेल बीइंग और ट्रीटमेंट गारंटी करूंगा और ये लिखा होना चाहिए। अगर आप तीसरा पैराग्राफ पढ़ोगे उसमें ये उन्होंने दर्शाया है। और फिर वो जल्दी लंच खा के 1 बजे के लगभग फोर्ट विलियम से हेलीकॉप्टर में चले गए और उन्होंने ये भी कहा था कि इंडियन आर्मी रेस कोर्स को सिक्योरिटाइज करेगी और सरेंडर उधर होगा, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को दिखना चाहिए कि अब वो आजाद हो गए हैं। मैं कोई कमरे में सरेंडर नहीं लूंगा, स्टेडियम में बांग्लादेश के सिटीजन्स के सामने सरेंडर लूंगा।
जब न्याजी का सरेंडर लेने के लिए ढाका जाने की बात आई तो वो अपने साथ अपनी पत्नी भगवंत कौर को भी ले गए। उनके इस फैसले की उनके कुछ साथियों ने आलोचना की, लेकिन उनको नजदीक से जानने वाले पुष्पिंदर सिंह इसका एक कारण बताते हैं।
जब सरेंडर हुआ तो मेरा ख्याल जब उन्होंने सोचा कि मैं वाइफ को भी ले जाऊंगा सरेंडर सेरेमनी पे, लोगों ने कहा ये तो बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि मेरे मतलब एक तो लड़ाई हो रही है या अभी खत्म हुई, अभी सरेंडर नहीं हुआ, खतरा भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल उन्होंने कैलकुलेट किया कि देखो बहुत गंदी लड़ाई थी, मेरा मतलब जो जब पाकिस्तान आर्मी ने मार्च में जेनोसाइड शुरू किया, लाखों बंदे, पता नहीं कितने बंदे मारे गए और वाइव्स वीमेन गॉट मोलेस्टेड एंड रेप्ड एंड मर्डर्ड। तो इन अ वे ये सिंबल था कि हम जीते बट वी आर ह्यूमेन। तो माय वाइफ रिप्रेजेंट्स द इंडियन थिंग अबाउट इन ऑनर ऑफ अ वुमन। तो आई थिंक दिस वॉज द रीजन ही डिड इट। वैसे तो कोई मेरा मतलब इट वॉजंट टूरिस्ट थिंग कि भाई वहाँ गए।
जनरल अरोड़ा को अपनी पत्नी से बहुत प्यार था और उनका वो बहुत सम्मान भी करते थे। उनकी नतनी और आजकल मशहूर गायिका बन चुकी सोनम कालरा याद करती हैं।
वो अपने मेरी नानी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तो सारा समय उनके साथ बिताते थे। शाम को वो लोग रमी खेलते थे, वो उनका इवनिंग का रूटीन था और एक ही कुर्सी पे बैठते थे, ये भी नहीं कि आमने सामने, साथ में ही बैठ के वो रमी खेलते थे। और नानी अम्मी हमेशा हारती थी तो वो हमेशा उन पे इल्ज़ाम लगाती थी कि जीत जी आप चीटिंग कर रहे हो, और वो हमेशा ऐसे हंसते थे जैसे कोई यू नो यंग कपल इन लव उनके बीच में होता था। वो हंसते थे और फिर हमेशा नानी अम्मी को जीतने देते थे। नानी अम्मी का नाम भगवंत कौर था और प्यार से उन्हें उनके फ्रेंड्स बंटी बुलाते थे या पंती पंजाबी में, तो वो हमेशा पंती जी करके उनसे बात करते थे, कभी उन्हें पंती भी नहीं बोला, पंती जी और नानी अम्मी जीत जी।
16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी का आत्मसमर्पण लेने वो कोलकाता से पहले अगरतला गए और वहां से हेलीकॉप्टर से ढाका पहुंचे। उस समय उनके साथ वायुसेना की पूर्वी कमान के प्रमुख एयर मार्शल देवान और नौसेना की पूर्वी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल एन कृष्णन भी थे। बाद में एडमिरल कृष्णन ने अपनी आत्मकथा इस सेलर्स स्टोरी में लिखा।
रेसकोर्स मैदान में एक छोटी सी मेज और दो कुर्सियां रखी गई थीं। उन पर जनरल अरोड़ा और जनरल नियाजी बैठे थे। मैं, एयर मार्शल दीवान, जनरल सगत सिंह और जनरल जैकब पीछे खड़े थे। आत्मसमर्पण के दस्तावेज की 6 प्रतियां थीं, जिसे मोटे सफ़ेद कागज पर टाइप किया गया था। पहले नियाजी ने दस्तखत किए और फिर जनरल अरोड़ा ने। पता नहीं जानबूझकर या बेख्याली में नियाजी ने अपना पूरा हस्ताक्षर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लिखा AAK निया। मैंने जनरल अरोड़ा का ध्यान इस तरफ दिलाया। अरोड़ा ने नियाजी से कहा कि वो पूरे दस्तखत करें। जैसे ही नियाजी ने दस्तखत किए, बांग्लादेश आज़ाद हो गया। नियाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बिल्ले उतारे, रिवॉल्वर से गोली निकाली और उसे जनरल अरोड़ा को थमा दिया। फिर उन्होंने अपना सिर झुकाया और फिर जनरल अरोड़ा के माथे को अपने माथे से छुआ, मानो वो उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे हों।
1973 में जनरल अरोड़ा सेना से रिटायर हो गए। उन्हें सरकार ने सेना अध्यक्ष नहीं बनाया और न ही अन्य जनरलों की तरह किसी राजभवन में ही भेजा। जनरल अरोड़ा की गिनती भारत के बेस्ट ड्रेस्ड लोगों में से होती थी।
बुढ़ापे में भी उनकी जो स्पाइन थी बिल्कुल सीधी थी, बिल्कुल सीधे खड़े होते थे, इतने लंबे, इतने खूबसूरत नजर आते थे। उनका स्किन टोन भी बहुत खूबसूरत था, नाइट सूट भी परफेक्टली क्रीज्ड होता था और कभी मैंने एक बाल यहाँ से वहाँ आउट ऑफ प्लेस नहीं देखा, बिल्कुल परफेक्टली टर्न्ड आउट। आप कभी उनको ऐसे नहीं देखते कि शाम की चाय भी पीते घर पे बैठ के तो आराम से स्मार्ट, कभी विंटर में अपना सूट पहना होता, पॉकेट स्क्वायर अपने पॉकेट में नीटली, और जब उनके बूढ़े भी हुए और वॉकिंग स्टिक भी थी तो वो भी वेरी नीटली यूज टू होल्ड हिज वॉकिंग स्टिक हमेशा, यू नो व्हेन दे से इंग्लिश में कहते हैं ही ऑलवेज स्टूड टॉल।
उनको किताबें पढ़ने और गोल्फ खेलने का बहुत शौक था। गार्डियन अखबार ने तो यहाँ तक लिखा था कि आत्मसमर्पण वाले दिन भी वो गोल्फ का एक राउंड खेलकर ठाका गए थे। जनरल अरोड़ा बहुत अच्छे डांसर भी थे और संगीत में भी उनकी गहरी रुचि थी।
उनका जो फेवरेट शब्द था गुरु गोविंद सिंह जी का लिखा हुआ था और नानियमी का पहले देहांत हुआ था, तो उनके जाने के बाद थोड़ा हाँ वो काफ़ी दुखी हो गए थे बिकॉज सचमुच में उनकी अर्धांगिनी थी। तो जब भी हम उनके लिए कीर्तन उनके डेथ एनिवर्सरी पे रखते थे तो एक शब्द ज़रूर हमेशा वो कहते थे रागियों से कि आप इसे गाएं, मित्र प्यारे आल मुरी दादा कहना।
यह थी विवेचना और अब वक्त हो चला है खेल समाचारों का। स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी आदेश कुमार गुप्त। कुछ ही देर पहले भारत और श्रीलंका के बीच 2020 मैच शुरू हुआ। आदेश जी,
जी देखिए बहुत ही शानदार शुरुआत की है भारत ने। दरअसल बहुत बड़ा धक्का लगा था जब पिछले मैच में भारतीय टीम केवल 101 रनों पर ढेर हो गई थी और उसके बाद श्रीलंका टीम ने जीत का लक्ष्य 5 विकेट से हासिल किया था। तो इसलिए भारत के लिए आज का मैच जीतना जरूरी, क्योंकि 3 मैचों की सीरीज में रोमांच बना रहे और रोमांच का सिलसिला अब यहाँ तक आ पहुँचा है धोनी के अपने गृहनगर में कि भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाई और उसका भरपूर लुत्फ उठाते हुए थोड़ी देर पहले 6 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन बना लिए थे। शिखर धवन धुआंधार 48 रन बनाकर नाबाद है, उनका साथ दे रहे हैं रोहित शर्मा। आज भारतीय टीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और अगले बुलेटिन में जब हम सामने होंगे तब बताएंगे कि किस तरह का लक्ष्य भारत ने रखा और श्रीलंका क्या कुछ कर रहा है। उधर आज से मेजबान न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हुई, जिसका पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन में खेला जा रहा है। आज टॉस हारकर न्यूजीलैंड की पहली पारी केवल 183 रन पर सिमट गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने जवाब में 3 विकेट खोकर 147 रन बना लिए थे।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार जी। और अब कार्यक्रम को खत्म करने से पहले एक बार फिर से सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जर्मनी की म्यूनिक में विश्व के महत्वपूर्ण देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि एक हफ्ते के अंदर सीरिया में युद्ध को खत्म किया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वो सीरिया में 24 घंटों के भीतर सहायता सामग्री पहुंचाना शुरू कर सकता है। नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने उम्मीद जताई कि सीरिया पर हुए इस समझौते के बाद रूस कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हमलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगा। बांग्लादेश की सरकार ने रोहिंग्या जनजाति समूह के उन लोगों की गणना शुरू कर दी है जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। बीबीसी समाचार।
कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला था हेमंत कुशवाहा ने। आप हमें चाहें तो ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही हमारे सारे कार्यक्रम भी वहां सुन सकते हैं और बीबीसी के रेडियो के सारे कार्यक्रम हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर भी मौजूद हैं।